समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और जानेंगे देश की हलचल। इसके अलावा कुछ खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे और कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ होगा। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
Hello, Sir Firozi. Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. And Sir Firozi, it's already 4th of January, so ab tak aapka resolution qayam hai ya toot gaya?
Bahut had tak koshish chal rahi hai ki qayam rahe aur uspe kaam karte rahe jo resolution, isliye abhi public nahi kiya hai usko.
Right, jab khud ko yakeen ho jaye ki haan kam se kam ek mahina nikal liya, then you should make them public. That's a nice strategy indeed. And here's hoping all the listeners who made their resolutions on 31st December with their drinks and coffees in their hand ke ye karna hai, to I hope aap usme dedication, determination and discipline ke saath lage rahiye, because that's the key to live a happy life. You don't have to prove it to others, just prove it to yourself, because you don't have to prove anything to anyone. If you are dedicated and disciplined in your own eyes, I think that is a life worth
living. Bilkul Saira, kehte na ki mehnat jo kare wo aap akele mein kare taki jo uske natije hain वो सबको दिखाई दें, आपको बताने की भी जरूरत ना पड़े।
एब्सोल्युटली, वो दिख ही जाते हैं, isn't it? On that note, we begin today's show, Parikrama. And since the name of the show is Parikrama, so hasbe dastoor hum desh ki parikrama pe niklenge. We'll go to different parts of the country and see what exciting stories our correspondents have from there. Because, all these wonderful stories, sometimes they are not part of our main bulletins. And that's why we bring you these amazing news magazine like Parikrama. And apart from that, we'll have a very special segment, Dateline India, in which we are going to talk about a very important topic today. Today, again related to fitness and fitness, mental well-being, everything. और जिससे देश का भी ऊंचा नाम होता है, तो काफी हिंट तो हम लोगों ने दे दिया है। लिसनर्स माइट बी थिंकिंग व्हाट इज इट, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स एंड सी व्हाट कॉरेस्पोंडेंट्स हैव देयर स्टोरीज। और लास्ट सेगमेंट में कुछ ऐसी बहुत ही खास शख्सियत को आज याद करेंगे, हु ईदर हैव द बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और बर्थ डेज टुडे, एंड सम रियली नाइस सॉन्ग्स वी आर गोइंग टू प्ले, बिकॉज वो सारी
श्रोताओं की यादें ताजा हो जाएंगी कि किसी फिल्म में उन्होंने वो गाने सुने थे, वो डायलॉग सुने थे।
और सबसे बड़ी चीज है ना, हम लोग गाने सुनते तो भले ही फिल्मों में है कहीं ना कहीं, लेकिन वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं, बिकॉज आर इमोशंस, सम वेरी स्पेशल इमोशंस आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स एंड फिल्म्स।
हम देखते भी कि कोई सॉन्ग प्ले होता है तो वो यादें जो हैं, हम तुरंत उन यादों पर पहुंच जाते हैं, वो चीजें याद आने लगती
हैं। सो दैट इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ म्यूजिक। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन टुडेज शो विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts that India's performance in various sports has consistently improved since 2014 and is now bidding to host the 2036 Olympics. Inaugurates National Volleyball Tournament via video conferencing in Varanasi, Uttar Pradesh.
Grameen Vikas Mantri Shivraj Singh Chauhan ne kaha, Manrega bhrashtachar ka paryay ban gaya tha, jahan aksar shramikon ka shoshan hota tha.
India expresses deep concern over recent developments in Venezuela, reaffirms its support to the well-being and safety of people of the country.
इस बीच सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी.
Leaders of Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council meet BNP acting chairman Tariq Rehman in Dhaka to discuss growing concerns over violence against minorities in the country.
और मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया।
And now we throw open the show with our special segment Dateline India, and today we are going to talk about sports as a pillar of nation building. So jo hint hum log ne di thi na ki ek aisa topic hai jo ki na ki aapki physical but even related to your mental well-being and also to the nation. Sports is that field. And I'd like to start this segment with a quotation of Paulo Coelho. He said that if you conquer yourself, then you conquer the world. As India steps forward with ambition to host the 2036 Olympics, his words feel deeply relevant today.
बिल्कुल सायरा, भारत में खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत शक्ति के रूप में देखा जाता है। खेल देश में एकता बढ़ाने, युवाओं को प्रेरित करने और भारत को एक आत्मविश्वासी और उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
That's right, Sir Firozi. And today from the ancient city of Varanasi, where tradition flows as endlessly as the Ganga, India sent out a message of confidence, ambition and unity.
और सायरा, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे सपने के बारे में बात की जो कभी दूर का लगता था लेकिन अब पहुंच के भीतर प्रतीत हो रहा है, यानी 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की मजबूत दावेदारी।
Yes, this dream feels possible today because across villages and cities, school grounds and stadia, something has shifted.
सायरा, आज हम देख रहे हैं कि युवा खिलाड़ियों को अब वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके पोषण को प्राथमिकता दी जा रही है।
Talent scouting has grown sharper and sports have moved from the margins to the mainstream now.
और अब हम सब देख रहे हैं कि कैसे एक छोटे शहर का युवा सूर्योदय से पहले ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है और एक रनर धूल भरे ट्रैक पर अटूट प्रतिबद्धता के साथ अभ्यास कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जेंजी को वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देखकर देश को गर्व महसूस होता है, तो सायरा ये बात दिल को छू जाती है क्योंकि एक देश के तौर पर हम सभी इस गर्व को साझा करते हैं।
हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। बीते दशक में स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है।
Yes, indeed. And today that spirit is alive at Dr. Sampurnanand Sports Stadium in Varanasi. For the first time, Purvanchal is hosting a national level volleyball championship of this scale.
बिल्कुल सायरा, और भारत भर से 1000 से ज्यादा पुरुष और महिला खिलाड़ी पूरे जोश और दृढ़ता के साथ इसमें भाग ले रही हैं।
And in fact, Firozi, volleyball itself, it offers a kind of a lesson like every sports does, isn't it? No single player wins a match. Every point demands coordination, trust and readiness to step up. Isn't that how our nation progresses as well?
बिल्कुल सायरा, और प्रधानमंत्री ने भी इसी बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल की तुलना भारत की विकास गाथा से की, जहां हर नागरिक की एक भूमिका होती है, हर कोशिश मायने रखती है और सफलता तभी मिलती है जब जिम्मेदारी साझा की जाए।
वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूँ। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है।
Yes, and this wave of progress isn't limited to one city or one sport. Look at northern India, to the cold deserts of Ladakh, a region which is known for courage and endurance. It has taken a historic step with the launch of the Ladakh Sports Policy 2025, its first ever sports policy since becoming a union territory.
Bilkul Saira, aur jab hum Varanasi mein rashtriya tournament ki mezbani ko dekhte hain ya Ladakh mein niti nirman aur Bharat ki Olympic mein bhumika ko dekhte hain, to hum sabke mann mein ek sawal to uthta hai ki kya in sab cheezon ka aapas mein koi नहीं है।
Well, the answer unfolds clearly that they are connected threads of one larger story. It's a story of confidence, a story of reform, a story of a nation that now sees sports not as recreation alone, but also as a character building and a nation building force.
श्रोताओं, अब कार्यक्रम का वो अंक आ चुका है जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश भर की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानते हैं कि उनके पास आज हमारे पास क्या खास जानकारी है। तो सायरा, सबसे पहले किस जगह की परिक्रमा पर चली जाए?
Well, we are starting the parikrama from the northeast. Well, bidding the outgoing year and welcoming the new one with the crash boom bang celebration has become more or less a tradition for the Mizos to lighten up their moods. And the Sokharmothai Hills on the outskirts of Aizawl, they hosted a sunset viewing event organized by the tourism department. So let's hear more from our correspondent.
For Mizos, it is almost a custom to lighten emotions by bid farewell to the outgoing year and greet New Year with a crash boom bang celebration. On December 31st, the tourism department successfully organized a New Year's Eve program at Sakorpui Duaitlang. Huge crowd attends the event to enjoy the final sunset of the year while listening to a performance by various artists. Tourism Department Minister Nal Nginglawamar launched the first sunset viewing event at Sakormuituai Hill, organized by the Mizoram Tourism Department. The minister praised the Siphir village community tourism efforts, highlighting the site's unlimited potential. He also said that the government is making efforts to make Mizoram an appealing tourist destination during winter. Mary El Renthei, a resident of Aizawl, appreciates the Tourism Department's event, which allows young people to unite and wave farewell to the year.
Hello, I am Mary from Aizawl. Mizoram government's initiative of watching the sunset from a very high altitude, waving goodbye to the year that is ending with songs and music, is very exciting. I come here with my friends and we are having a very nice time. This has never been organized before, and since it is happening, it is very thrilling as well. I think this event by our state government has a vast potential for tourism in the coming years. Thank you.
The occasion, which is regarded as Mizoram's most anticipated time of year, brings people of all age together for a sunset view and local artist performance that heightens the joyful mood. For Parikrama, Isaac from Akashvani, Aizawl.
देश की आने वाली पीढ़ी सशक्त और सुदृढ़ बने, इस उद्देश्य से सरकार मिड डे मील योजना चलाती है, लेकिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इस योजना का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
सरकार की मिड डे मील योजना को छत्रपति संभाजीनगर में इस्कॉन के अन्नामृत फाउंडेशन का साथ मिला और इस योजना के लाभ कई गुना बढ़ गए। गुणवत्तापूर्ण आहार से बच्चों का पोषण तो अच्छा हुआ ही, साथ ही शिक्षा की मुख्य धारा से बच्चों के बाहर होने का प्रमाण कम हुआ। इस बारे में अन्नामृत फाउंडेशन के संचालक सुदर्शन पोटभरे ने और अधिक जानकारी दी।
प्रतिदिन लगभग 40,000 बालकों तक यह मध्यान्ह भोजन सेवा प्रदत्त की जा रही है। उच्चतम गुणवत्ता, संतुलित पोषण और सर्वोत्तम स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। समय समय पर किए गए मूल्यांकनों द्वारा इस भोजन से विद्यार्थियों के शारीरिक स्थिति एवं उपस्थिति में सकारात्मक बदलाव की पुष्टि भी हुई है। हाल ही में फाउंडेशन ने जालना में भी अपना सेवा विस्तार किया है, जहां से 12,000 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन सेवा देना प्रारंभ भी हुआ है।
कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होते हैं। इन स्कूली बच्चों का पोषण कर अन्नामृत फाउंडेशन के माध्यम से इस्कॉन संगठन अपनी कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम दे रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
And Sir Rosie, well, if you know that today the world is celebrating World Braille Day.
Bilkul.
And it is celebrated today to mark the birth anniversary of its creator, Louis Braille. Well, to tell our listeners that Braille is a code that enables the visually impaired to read with their fingertips using a system of 6 raised dots. It was created, as I said, in 1824 by a French boy named Louis Braille, who was born today, that is 4th of January in 1809. Today, Braille is used all over the world in many languages. Thousands of visually impaired people use Braille for everything from shopping lists to reading novels as well as learning music. And pure desh mein agar dekha jaye Braille Braille Day apni tarah observe kiya ja raha hai. In fact, New Delhi may be, you know, the National Federation of the Blind organized a function in New Delhi to commemorate this day, and I guess something happened in Bhuj as well.
Ji bilkul, is avsar par Gujarat ke seemavarti Kutch zile ki ek anokhi library ki kahani हम अपने श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं. भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये रिपोर्ट.
दृष्टिहीन भाई बहनों को स्वाध्याय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1980 में बचाऊ शहर में ज्ञान ज्योत ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना की गई थी. इस पुस्तकालय का उद्देश्य केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को स्वयं पढ़ने की क्षमता देकर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है. समय के साथ पुस्तकालय ने परंपरागत ब्रेल पठन के साथ आधुनिक तकनीक का प्रभावी समन्वय किया है. यहाँ विद्यार्थियों को रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ऑर्बिट रीडर, विक्टर रीडर और एचवी प्लेयर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है. ये उपकरण विद्यार्थियों को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहे हैं. नवचेतन अंधजन मंडल के सचिव और स्पेशल एजुकेटर हिमांशु सोमपुरा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया,
प्रिंट डिसेबल लोग यानी ऐसे लोग देख के पढ़ नहीं सकते, या उनके हाथ नहीं है या उंगली नहीं है ताकि वो पुस्तक संभाल नहीं सकते, या उनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक्सेसिबल फॉर्मेट में पुस्तकें तैयार करते हैं और वितरित करते हैं. दूसरा, जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए फुल्ली नेविगेबल डेजी ऑडियो बुक तैयार करते हैं और उनको भेजते हैं. तीसरा फॉर्मेट हम लोग करते हैं एक्सेसिबल ईपब. उसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट की मदद से आप आंख से भी पढ़ सकते हैं या तो टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से आप सुन भी सकते हो.
विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर कच्छ का यह ज्ञान ज्योत ब्रेल पुस्तकालय देश भर के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में सामने आया है. परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी.
तो सायरा अपने श्रोताओं को बता दिया कि देश के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ चल रहा है. स्पोर्ट्स की भी कोई जानकारी होगी आपके पास?
यस एब्सोल्युटली. आज बिजनेस न्यूज नहीं होगी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ संडे एंड मार्केट इज क्लोज्ड, बट इन स्पोर्ट्स वी हैव दैट इन अंडर 19 मेंस क्रिकेट इंडिया डिफीटेड हर साउथ अफ्रीका बाय 25 रन्स अंडर द डीएलएस मेथड इन द ओपनिंग यूथ ओडीआई ऑफ द 3-match सीरीज एट विलो मुआ पार्क इन बिनोनी लास्ट इवनिंग. पुट इन टू बैट इंडिया वॉज बोल्ड आउट फॉर 300 रन्स इन 50 ओवर्स. And now if we have to remember some of those freedom fighters who sacrificed their lives during the national movement.
We remember Gandhian freedom fighter and economist Joseph Chelladurai Kumarappa, who was born on the 4th of January 1892 at Tanjore.
As an economist, Kumarappa believed that a human is not merely a wealth-producing agent, but essentially a member of the society with political, social, moral responsibilities. His essays drew the attention of Mahatma Gandhi, who turned him into a constructive worker.
At the Karachi session of Congress in 1931, Kumarappa was chosen as the convener of a select committee to study the details of the financial obligation between Britain and India. When Gandhiji went to England to attend the second roundtable conference, Kumarappa assumed the editorship of his newspaper, Young India, and he was jailed for 2 years and 6 months of rigorous imprisonment for his writings. On his release from jail, he helped Dr. Rajendra Prasad and Jamnalal Bajaj as financial advisor during the earthquake relief work in Bihar in 1934. In 1942, Kumarappa was again jailed for his article, Stone for Bread.
While in prison, he wrote 2 books, Practice and Precepts of Jesus and The Economy of Permanence.
In the post-independence period, Kumarappa travelled on various missions across the globe for the national cause. Later, he retired from political life and settled down at Gandhi Niketan in Madurai district. Kumarappa breathed his last on the 30th of January 1960, we salute the great nationalist.
आज हम प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जफर खान को भी याद कर रहे हैं। ये सितार त्रयी के सितार वादक थे। इंदौर घराने से इनका ताल्लुक रहा। वर्ष 1976 में मुंबई में सितार के लिए हलीम अकादमी की स्थापना इन्होंने की। मुगले आजम, झनक झनक पायल बाजे, कोहिनूर आदि फिल्मों के संगीत इनके सितार वादन से सुसज्जित रहे। इन्हें वर्ष 1970 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण और वर्ष 1987 में संगीत नाटक आदमी से सम्मानित किया गया। और अब हम याद कर रहे हैं महान कवि गोपाल दास नीरज को, जो अपनी रचनाओं से अमर हो गए। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित नीरज को कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता मिली। यही लोकप्रियता इन्हें हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने के लिए बंबई ले आई। पहली ही फिल्म में इनका गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे बेहद लोकप्रिय हुआ और फिर फिल्मी गीत रचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो कई वर्षों तक जारी रहा। हालांकि बंबई की जिंदगी से भी इनका मन बहुत जल्द उचाट हो गया और वे फिल्मी दुनिया से अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आए। हम आपको सुना रहे हैं उनकी एक गजल उन्हीं की आवाज में।
दिल जो कह ना सका, ये प्रदीप कुमार के लिए बजी थी। और बिकॉज क्योंकि आज प्रदीप कुमार की भी बर्थ एनिवर्सरी है, टुडे इज 4th January, सो जिस थोड़ी सी बजी थी, क्यों ना आज वो अभी पूरी सुना दी जाए वो गाना।
जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। जो न कह सका
Yes, we are remembering Pradeep Kumar on his birth anniversary today. And when Kumar was just 17 years old, he then decided to take up acting. So, Sir Firozi, sochiye ki as a teenager, hum log kitna confused hote hain. But very few people have that clarity of thought. And Pradeep Kumar probably was one of those people. And that's how he started his film career, first in Bengali cinema. His notable roles in many Bengali films were in Alaknanda, directed by renowned filmmaker Debiki Bose. And in 42, this was the name of the film. And Pradeep Kumar later shifted to Bombay and Filmistan Studios and had an important role in the film Anand Math. He played the lead role with Beena Rai in Anarkali and with Vijayanthimala in Nagin. And of course, the rest is history. So we pay tribute to the great actor today. And iske alawa hum log zikr karne wale hain us keh sakte hain azim musician and song composer ka, jinhone Indian cinema mein itne zabardast gaane diye hain that I think that our whole memories of Indian cinema, especially of the kids of 90s, will be incomplete if we do not if we skip probably Rahul Dev Barman, jinko duniya jaanti hai R.D. Barman ke naam se, ya jinko hum log pyar se kehte hain Panchamda.
Ji bilkul, Saira cinema jagat mein Panchamda ke naam se lokpriya hue R.D. Barman ko vishv ke sarvashreshth sangeetkaron mein se ek mana jata hai. R.D. Barman ne 331 filmon mein sangeet diya. Panchamda sound ke innovator mane jate the. Inhone pehli बार फिल्मों में बोतल, सीटी, बर्तन, सीढ़ियों की आवाज और यहां तक कि इंसानी सांसों को भी संगीत का हिस्सा बनाया, जिसे आजकल फिल्मों में फॉली साउंड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आरडी बर्मन ने 18 फिल्मों में आवाज भी दी। भूत बंगला और प्यार का मौसम में इन्होंने अभिनय किया। कटी पतंग, यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका से लेकर 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी तक एक से बढ़कर एक सुरीले संगीत का सृजन इनके हाथों से हुआ। तो क्यों ना एक गीत इनका सुन लिया जाए।
ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
फ्र From the 60s to the 90s, Barman composed musical scores for 331 films, bringing a new level of music ensemble with his compositions. Barman did his major work with legendary singers Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle and Mohammad Rafi. He also worked extensively with lyricist Gulzar, with whom he has some of the most memorable numbers in his career. Aap ye sochiye ki hum log jo aandhi ke gaane hain, unke bina hum log soch hi nahi sakte ki hum log kaise koi quiet evening mein unko na suna jaye, isn't it? And well, Pancham Dao, he was the only son of composer S.D. Barman, and he was mainly active, you can say, although unhone bahut se Bengali gaane bhi, Bangla gaane bhi bahut se compose kiye, but predominantly he was active in the Hindi film industry, and in fact he also provided vocals for it. And R.D. Barman received his early education in West Bengal, but later on, we all know that he moved on to Bombay. And some of the notable films in which Barman is credited as the music assistant, shuruaat mein kyunki wo assistant rahe the, those were Chalti Ka Naam Gaadi, Kaagaz Ke Phool, Tere Ghar Ke Saamne. But in 1959, R.D. Barman signed up as music director for the film Raaz, which was directed by Guru Dutt's assistant Niranjan. The film was never completed. The lyrics of this Guru Dutt and Wahida Rehman star film, they were written by Shailendra, and Barman recorded two songs for the film before the film was shelved. The first song was sung by Geeta Dutt and Asha Bhosle. Second one had vocals by Shamshad Begum. However, the first film that was released and with Barman as an independent music director was Chote Nawab in 1961. Uske baad to keh sakte hain ki R.D. Barman ne apna jo keh sakte hain na ek maqam hasil hi kar liya in the film industry mein, because so many films in which he gave some very very memorable music, and in fact even today when we feel like tapping our feet to some music ya koi romantic gana sunne ka man karta hai, to wo inadvertently Pancham Da ka hi compose kiya hota hai.
Aur yahi gaane hain jo hum baat kar rahe the karyakram ki shuruaat mein bhi, ki ye gaane jo hain hame yaadon se jodte hain.
Absolutely. तो सब लोग को जब भाई मोहब्बत तो सबको होती है, isn't it, सर फिरोजी? तो जब किसी को मोहब्बत होती है, आई एम श्योर कि सब लोग को यादों की बारात का जीना तमान विद द गिटार, वो गाना तो जरूर याद आता है. And well, Barman married Asha Bhosle in the year 1980, and despite his mother's vehement opposition to their relationship, together the couple recorded many hit songs and also staged many live performances. So one more song from R.D. Barman's repertoire.
Gum hai kisi ke pyaar mein, dil subah shaam, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम. हाय राम, हाय राम.
कुछ लिखा?
हाँ.
क्या लिखा?
बिल्कुल सायरा, आर.डी. बर्मन के बहुत ऐसे गाने हैं जिनको सुन के आप थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनकी खासियत सिर्फ इतनी नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे गीतों की भी रचना की जो बहुत ठहराव भरे रहे.
That's right. भले ही लोगों को महबूबा महबूबा भी याद है, लेकिन बहुत से लोगों को ये खूबसूरत सा गाना नदिया के पार का भी याद है.
बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना
और
तुम.
Thank you.
हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को।
श्रोताओं, इस बेहद खूबसूरत से गीत के साथ इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
ये धरती, ये नदिया, ये रह